अगला शीर्षक है प्रोफेसर नगेंद्र का केशव का आचार्यत्व। आचार्य शब्द के दो अर्थ हैं, साधारण अर्थ है दीक्षा आदि देने वाले गुरु और विशिष्ट अर्थ है किसी सिद्धांत अथवा संप्रदाय के प्रवर्तक। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग इन दोनों अर्थों से संबद्ध अन्य अर्थों में भी शिथिल रीति से होने लगा। उदाहरण के लिए शिक्षक या अध्यापक के अर्थ में, विषय विशेष के निष्णात विद्वान उस्ताद के अर्थ में और भी शिथिल रीति से विद्वान अथवा पंडित के अर्थ में भी। इस प्रकार आचार्य शब्द का मूल पारिभाषिक रूप आज विकृत हो गया, फिर भी इसके विषय में एक बात अब भी यथावत रूढ़ है और वह यह कि आचार्य का संबंध शास्त्र से है। आचार्य शास्त्रकार अथवा शास्त्र गुरु या कम से कम शास्त्रवेत्ता अवश्य होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी आचार्य का प्रत्यक्ष संबंध काव्य से न होकर काव्यशास्त्र से ही है। काव्य की रचना करने वाला कवि और काव्यशास्त्र की रचना करने वाला आचार्य कहलाता है। मिश्र बंधुओं ने आचार्य के कर्तव्य कर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यह आचार्यत्व का अत्यंत स्थूल रूप है। यह वास्तव में रीतिकार का लक्षण है और हिंदी में उन दिनों आचार्य का अर्थ रीतिकार ही था। केशव के आचार्यत्व का विवेचन करते हुए इन विभिन्न अर्थों को ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रकार अर्थात नवीन काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय के प्रवर्तक। दूसरा शास्त्र भाष्यकार अर्थात शास्त्र या व्याख्याता तथा रीतिकार एवं कवि शिक्षक। तीसरा काव्य शास्त्र का विद्वान। विवेचन का क्षेत्र, केशव ने काव्यशास्त्र के संबंध में केवल दो ग्रंथ लिखे हैं, कविप्रिया और रसिकप्रिया। लाला भगवान दीन जी का अनुमान है कि उन्होंने कदाचित छंद पर भी एक ग्रंथ लिखा था, परंतु वह अप्राप्य है। कविप्रिया का प्रतिपाद्य अलंकार है, इसमें सामान्य और विशेष अलंकारों का अर्थात वर्ण विषय से संबद्ध और वर्णन की शैली से संबद्ध काव्य सौंदर्य के उपकरणों का वर्णन अथवा विवेचन है। रसिक प्रिया रस का ग्रंथ है, इसमें रस के अंग उपांगों का, विशेषता श्रृंगार रस के अंग उपांगों का, नायिका भेद सहित विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार केशव के प्रतिपाद्य विषय हैं अलंकार और रस, विशेष रूप से श्रृंगार रस जिसके अंतर्गत नायिका भेद का भी समावेश है। रसिक प्रिया में वृत्तियों का भी संक्षिप्त वर्णन है, संभव है छंद शास्त्र भी उनका विषय रहा हो और रामचंद्रिका के लेखक के लिए वह सहज स्वाभाविक ही था। इस प्रकार आठ अंगों में से उन्होंने दो तीन अंगों का ही विवेचन किया, कुल मिलाकर उनका क्षेत्र सीमित ही है। काल क्रमानुसार रसिक प्रिया की रचना कवि प्रिया से पूर्व हुई थी। इसका अभिप्राय यह है कि केशव की प्रवृत्ति आरंभ में रसवाद की ओर थी और बाद में प्रौढ़ी प्राप्त कर वह अलंकारवाद की ओर हो गई। अब प्रश्न उठता है कि प्रौढ़ी की दृष्टि से तो अलंकारवाद की अपेक्षा रसवाद का यह स्थान ऊंचा है। ज्यो ज्यो अलंकार शास्त्र का विकास होता गया, त्यों त्यों अलंकारवाद की अमान्यता और रसवाद की मान्यता की ही पुष्टि होती गई। फिर केशव के विषय में ऐसा किस प्रकार हुआ? प्रश्न समीचीन होते हुए भी विकास क्रम के विपरीत है। उसके अनुसार अलंकारवाद काव्य शास्त्र की आरंभिक स्थिति की ओर, रसवाद अथवा रसध्वनिवाद उसकी विकसित अवस्था की सिद्धि थी। केशव ने अपने यौवन काल में स्वभाव से रसवाद के अंगभूत श्रृंगारवाद को ग्रहण किया, परंतु उसके उपरांत उन्होंने काव्यशास्त्र का और गहन अध्ययन करते हुए प्राचीनों के मत को प्रमाण मानकर अलंकारवाद को स्वीकार कर लिया। इसी क्रम से हम पहले केशव के रस विवेचन की और तदुपरांत अलंकार विवेचन की समीक्षा करते हैं। पहला, रस विवेचन। केशव ने यूं तो नवरस का वर्णन किया है, परंतु उनका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार ही है, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से रसराज माना है। सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार। अपने मत के पोषण में उन्होंने सभी रसों का समावेश श्रृंगार में कर दिया है। हास्यादि मित्र रसों का ही नहीं, रौद्र और विभत्सादि अमित्र रसों का भी उन्होंने श्रृंगार में वर्णन किया है। श्रृंगार का रसराजत्व केशव की कोई अपनी नवीन कल्पना नहीं, शताब्दियों पूर्व अग्निपुराण, श्रृंगार तिलक तथा श्रृंगार प्रकाश में उसकी घोषणा हो चुकी थी। अग्निपुराण की स्थापना है कि श्रृंगारी चैत्य कवि काव्य जातम रसमयम जगत, इसकी व्याख्या करते हुए अग्निपुराण के लेखक अथवा संपादक ने लिखा है, आनंद से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से रति की, जिसके की श्रृंगार हास्य आदि भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं, इसी की प्रतिध्वनि हमें भोज के श्रृंगार प्रकाश में मिलती है। उनका मत है कि विद्वान केवल गतानुगतिका के कारण ही श्रृंगार वीर आदि रसों का वर्णन करते हैं। वास्तव में रस तो केवल एक ही है, श्रृंगार। हमारा अहंकार ही प्रतिकूल परिस्थितियों के अभाव में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि के द्वारा आनंद रूप में संवेद्य होकर रसत्व को प्राप्त नहीं हो जाता है। रति, हास आदि भाव से ही उत्पन्न होते हैं, वे स्वयं रसत्व को कभी प्राप्त नहीं होते। वे तो श्रृंगार की शोभा को बढ़ाते हैं, जिस प्रकार की प्रकाश की किरणें अग्नि की कांति को बढ़ाती हैं। इसलिए स्थाई, संचारी आदि का प्रपंच मिथ्या है। श्रृंगार ही चतुर्वर्ग का कारण है, वही रस है। एकोन पंचा सद्भावा विरादयो मिथ्या रस प्रवादा श्रृंगार एवेक चतुर्वर्ग कारणम स रस इति। अग्निपुराण और श्रृंगार प्रकाश की यह स्थापना दार्शनिक आधार पर स्थित है। उसमें जीवन के मौलिक तत्वों के आधार पर श्रृंगार की महत्ता प्रतिपादित की गई है, जो मनोविश्लेषण शास्त्र आदि की अत्याधुनिक मान्यताओं से बहुत भिन्न नहीं है। परंतु केशव की दृष्टि उसके मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने केवल एक अर्ध दार्शनिक अथवा पौराणिक आधार को ग्रहण करते हुए सभी रसों का श्रृंगार में समावेश कर दिया है। श्री विश्वानु कुमारी हेतु श्रृंगार रूप में वास हास रस हरे मात बंधन करुणा में केसी प्रतियति रौद्र वीर मारो वत्सासुर भय दावानल पान पियो विभत्स बकी उर अति अद्भुत वंच विरंची मति शांत संतते सोच चित कही केशव सेवहु रसिक जन नवरस में ब्रज राजनित। उपर्युक्त स्तुति छंद में कवि ने नौ रसों का कृष्ण के व्यक्तित्व में समावेश कर अपने सिद्धांत के लिए आधार भूमि तैयार की है। कृष्ण जिस प्रकार श्रृंगारमय होते हुए भी नवरस रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार श्रृंगार भी नवरस में परिणत हो सकता है अथवा नवरस का श्रृंगार के साथ तादात्म्य हो सकता है। परंतु केशव इस तात्विक दृष्टि का निर्वाह नहीं कर सके। रसिक प्रिया के अंत में जहाँ उन्होंने श्रृंगारेतर रसों के लक्षण उदाहरण दिए हैं, वहां वे न तो इनके स्वरूप को स्पष्ट कर सके हैं और न इनमें से किसी रस का परिपाकी कर सके हैं। ये रस संचारी की स्थिति से आगे नहीं बढ़ सके और कहीं कहीं तो वे अपने स्वरूप से भी सर्वथा स्वतंत्र हो गए हैं। उनके करुण में शोक की उद्बुद्धि नहीं होती, केवल कृष्ण अथवा राधिका के प्रति सहानुभूति का उदय होता है। वहां रस का परिपाक ही नहीं, केवल भाव दशा है। वास्तव में केशव ने करुण का लक्षण भी परंपरा से थोड़ा हटकर किया है। उन्होंने इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति को करुण का मूल आधार न मानकर प्रिया के विप्रियकरण अर्थात इष्ट के अनिष्ट को ही माना है। यह लक्षण थोड़ा विचित्र अवश्य लगता है, क्योंकि किसी मान्य आचार्य ने इस प्रकार का लक्षण नहीं किया। केशव ने या तो किसी अप्रसिद्ध ग्रंथ के आधार पर से ग्रहण किया, या फिर अनुमान है कि इष्ट का नाश और अनिष्ट की प्राप्ति का अर्थ इन्होंने इष्ट का अनिष्ट कर लिया है। केशव ने ऐसी अनेक त्रुटियां अनेक स्थानों पर की है, अतएव यह शंका भी अनुचित नहीं है। इसके अतिरिक्त रौद्र, वीर और भयानक का एकांत श्रृंगार में वर्णन है। रौद्र में एक और तो सखी द्वारा राधा के मान का निवारण है, तेरे अंग के सभी उपमान तो तेरे भय से भाग गए, अब यह रुद्र रूप तूने किस पर धारण किया है। दूसरी ओर रतिरण में कृष्ण के रौद्र भाव का चित्रण है। इसी प्रकार भयानक का राधा और कृष्ण पर श्रृंगार परक प्रभाव दिखाया गया है, जिसके कारण कामिनिया प्रिय के कट से लग जाती है। विभत्स में श्रृंगार का ही प्रसंग है, फिर भी उसका परिपाक असफल नहीं कहा जा सकता। परंतु विभत्स का लक्षण देते हुए केशव ने स्थायी भाव रूप में जुगुप्सा शब्द का प्रयोग नहीं किया। ग्लानी का भी प्रयोग कुछ आचार्यों के अनुसरण पर मान्य हो सकता था, परंतु केशव ने उसे निंदमय माना। रसिक प्रिया के टीकाकार सरदार कवि ने निंदामय पाठ की ओर भी संकेत किया है। निंदा और जुगुप्सा अथवा ग्लानी में बड़ा अंतर है। आत्मनिंदा ग्लानी का मूल रूप है। दूसरों से भी अपनी निंदा सुनकर ग्लानी होती है, फिर भी निंदा और ग्लानी पर्याय नहीं हो सकते। और इसके अतिरिक्त जुगुप्सा में जो शारीरिक संवेदन अंतर्भूत है, उसका तो निंदा से कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं है। सारांश यह है कि केशव का रस विवेचन न तो अधिक तर्कसंगत है और न तात्विक। उसमें जो भिन्नता है वह भी किसी तर्कपुष्ट अथवा मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कारण प्रायः अपरिपक्व ज्ञान ही है। केशव ने श्रृंगार की रसराजता का विवेचन न तो अग्निपुराण अथवा श्रृंगार प्रकाश की भांति सूक्ष्म दार्शनिक अथवा मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है और न वह अपनी उस मूल कल्पना का ही निर्वाह कर सके हैं जिसका संकेत उन्होंने अपने मंगल छंद में किया है। वह कल्पना भी अपने आप में अत्यंत सार्थक है। भगवान मूलतः आनंद अर्थात श्रृंगार रूप होते हुए भी नाना रसमय है, परंतु केशव से इसका भी निर्वाह नहीं हो सका। अनेकता की मूलवती एकता का ग्रहण भी वे नहीं कर सके। इसके स्थान पर उन्होंने श्रृंगार की परिधि के भीतर कुछ अनुभवों की सहायता से रौद्र विभत्स आदि रसों का समावेश करने का असफल प्रयत्न किया है। उनकी ससफलता का मूल कारण यह है कि किसी रस का परिपाक उसके स्थायी की उद्बुद्धि द्वारा होता है, अनुभव मात्र के चित्रण से नहीं। उदाहरण के लिए रति रण में कृष्ण के रुद्र के अनुभव श्रृंगार के ही परिपाक में सहायक होते हैं, उनके द्वारा रौद्र रस का परिपाक संभव नहीं है। केशव तथा देव आदि हिंदी कवियों ने यही मौलिक त्रुटि की है। श्रृंगार के क्षेत्र में केशवदास ने एक वैचित्र प्रस्तुत किया और वह है श्रृंगार का दो वर्गों में विभाजन, प्रच्छन्न और प्रकाश। परंपरा से भिन्न होते हुए भी यह केशव की अपनी उद्भावना नहीं है, इसके लिए वे भोज के ऋणी हैं। और फिर शास्त्र की दृष्टि से यह विभाजन अधिक मौलिक एवं तर्कसंगत भी नहीं है, क्योंकि प्रच्छन्न और प्रकाश के भेद का निर्वाह श्रृंगार की सभी स्थितियों में संभव नहीं है। प्रौढ़ा स्वकिया का प्रच्छन्न श्रृंगार कैसे निभ सकता है या मुग्धा परकिया का प्रकाश श्रृंगार सामान्यतः कैसे संभव हो सकता है। भाव के विषय में भी केशवदास में परंपरा से कुछ वैचित्र मिलता है। उन्होंने भाव की परिभाषा भी कुछ विचित्र सी ही की है और इसके पांच भेद माने हैं। उदाहरण, आनन लोचन बचन मग प्रकटत मन की बात, ताही सो सब कहते हैं भाव कविन के तात। इसका अर्थ यह है कि आनन लोचन और वचन के द्वारा प्रकट होने वाली मन की बात मनोविकार ही भाव है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह परिभाषा अत्यंत अस्पष्ट और अपूर्ण है। इसमें संदेह नहीं कि भाव मनोविकार का ही नाम है और उसके माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, आंगिक और वाचिक, परंतु यह वर्णन अत्यंत स्थूल है। संभव है केशव ने इसका संकेत नाट्यशास्त्र से ही ग्रहण किया हो। वागंग सत्वोपिता काव्यार्थान भावयंतिति भावः, हो सकता है कि केशव ने इसी का अत्यंत स्थूल अर्थ कर दिया हो, क्योंकि दोनों लक्षणों के शब्दों में बहुत भेद नहीं है। काव्यार्थ के स्थान पर मन की बात का प्रयोग करके केशव ने इसे सरल बनाने का प्रयत्न किया है। केशव ने पांच प्रकार के भाव माने हैं। भाव सु पांच प्रकार के सुनो विभाव अनुभाव अस्थायी सात्विक कहें व्यभिचारी कविराव, यह भी भरत के आधार पर ही किया गया है। भरत ने भी इसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी और अस्थायी भाव सभी को भाव ही माना, क्योंकि उन सभी के द्वारा काव्यार्थ का भावन होता है। हाव और नायिका भेद के प्रसंगों में भी केशव ने कुछ विचित्रता दिखाई है, पर उनके प्रायः सभी तथाकथित नवीन भेद विश्वनाथ और भानुदत्त में किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने प्रचलित 10 हावों के स्थान पर 13 हाव माने हैं, जिनमें से हेला विश्वनाथ का उसी नाम का अगज अलंकार है और मद कृति साध्य अलंकार है। ऐसे ही उदाहरण नायिका भेद के प्रसंग में दिए जा सकते हैं।